गीता किसी विशेष व्यक्ति, जाति, वर्ग, पंथ, देश, काल जां किसी रूढ़ीवादी संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सर्वलौकिक सर्वकालिक धर्म ग्रंथ है। यह हर देश, हर जाति अते हर पद्धर दे विचार वाले स्त्री पुरुष सब लई है। सचमुच गीता संपूर्ण मानव जाति दा धर्म शास्त्र है। अते किन्ने मान दी गल है कि गीता आप दा धर्म शास्त्र है। ओ श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवद् गीता, आरंभ, चौथा अध्याय। अध्याय तीन विच श्री कृष्ण ने भरोसा दिवाया सी कि दोष दृष्टि तो रहित होके जो भी मानव श्रद्धा पूर्वक मेरे मत दे अनुसार चलेगा ओह कर्मा दे बंधन तो भली प्रकार छुट जाएगा। कर्म बंधन तो मुक्ति दिवाउण दी समर्था योग अर्थात ज्ञान योग जा कर्म योग दोनों विच है। योग विच ही युद्ध व्यापदा है। प्रस्तुत अध्याय विच ओह दसदे हन कि इस योग दा सिरजनहार कौन है, इसका क्रमवार विकास किवें हुंदा है। श्री भगवान उवाच।
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत।
अर्जुन, मैं इस अविनाशी योग नु कल्प अर्थात युग जा सृष्टि दे आरंभ विच विवस्वान अर्थात सूरज नु दस्या। विवस्वान ने मनु नू अते मनु ने इच्छबाकू नू कहा। किसने कहा? मैं। श्री कृष्ण कौन सन? एक योगी तत्स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग नू कल्प दे आरंभ विच अर्थात भजन दे आरंभ विच विवस्वान अर्थात जो विवश हन ऐसे प्राणियों नू कहिंदा है, श्वास विच संचार कर देंदा है। एथे सूरज एक प्रतीक है क्योंकि श्वास विच ही योग परम प्रकाश स्वरूप है अते उत्थे ही अर्थात श्वास विच ही उसकी प्राप्ति दा विधान है। वास्तविक प्रकाश दाता अर्थात सूरज उत्थे ही है। यह योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा सी कि इस विच आरंभ दा नाश नहीं हुंदा। इस योग दा केवल आरंभ भी कर दियो ता यह पूर्णता दिवा के ही शांत हुंदा है। शरीर दा कल्प दवाइयां नाल हुंदा है पर आत्मा दा भजन नाल हुंदा है। भजन दा आरंभ ही आत्मकल्प दा आरंभ है। यह साधना भजन भी किसे महापुरुष दी ही देन है। मोह निशा विच अचेत आदिम मानव जिस विच भजन दा कोई संस्कार नहीं है, योग दे बारे जिसने कदे सोचिया तक नहीं, ऐसा मनुख किसे महापुरुष नू वेखदा है ता उना दे दर्शन मात्र नाल उना दे वचना नाल टुट्टी फुट्टी सेवा अते समीपता नाल योग दे संस्कार उस विच संचारित हो जांदे हन। गोस्वामी तुलसीदास जी इसे नू कहंदे हन, जे चिते प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगू। अर्थात जिना ने प्रभु दा ध्यान कीता, जिना ने वेख्या, ओह सब परम पद दे योग हो गए। श्री कृष्ण कहंदे हन कि एह योग मैं आरंभ विच सूरज नू कहा, चक्षोह सूर्यो अजायत, महापुरुष की दृष्टि पैण मात्र नाल योग दे संस्कार श्वास विच प्रसारित हो जांदे हन। प्रकाश रूप स्वयं वश परमात्मा दा निवास सब दे हिरदे विच है, श्वास दे निरोध नाल ही उस दी प्राप्ति दा विधान है। श्वास विच संस्कारां दा सिरजन ही सूरज नू कहना है। समा आउण ते एह संस्कार मन विच अंकुरित होएगा, एहो सूरज दा मनु नू कहना है। मन विच अंकुरित होण बाद महापुरुष ते उस वाक लई अर्थात वचना लई इच्छा जाग उठेगी। जे मन विच कोई गल है तां उसनू पाउण दी इच्छा जरूर होवेगी। एहो मनु दा इच वाकू नू कहना है। लालसा होएगी कि ओहो नियत कर्म करिए जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन तो मोक्ष दियांदा है, ऐसा है ता कीता जाए अते फिर आराधना गति पकड़ लेंदी है। गति पकड़ के एह योग किथे पहुंचांदा है इस बारे ओह कहंदे हन,
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप।
इस तरह किसे महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषां दे श्वास विच, श्वास तो मन विच, मन तो इच्छा विच अते इच्छा तीवर होके क्रियात्मक आचरण विच ढल के एह योग उत्थान करदे करदे राज ऋषि श्रेणी तक पहुंच जांदा है। उस अवस्था विच जाके विदित हुंदा है। इस पद्धर दे साधक विच रिद्धियां सिद्धियां दा संचार हुंदा है। ओह योग इस महत्वपूर्ण समय विच इसे लोक अर्थात शरीर विच नष्ट हो जांदा है। इस सीमा रेखा नू किवें पार कीता जाए कि इस खास थां ते पहुंच के सारे नष्ट हो जांदे हन? श्री कृष्ण कहंदे हन, नहीं, जो मेरे आसरे है, मेरा प्रिय भगत है, अनन्य सखा है, ओहो नष्ट नहीं हुंदा।
स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्।
ओही एह पुरातन योग मैं तेरे लई वर्णन कीता है, क्योंकि तू मेरा भगत अते सखा है अते एह योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। अर्जुन खत्री श्रेणी दा साधक सी, राज ऋषि दी अवस्था वाला सी, जिथे रिद्धियां सिद्धियां दे थपेड़ियां विच साधक नष्ट हो जांदा है। इस समय विच भी योग कल्याण दे रूप विच ही है, पर अक्सर साधक इत्थे पहुंच के लड़खड़ा जांदे हन। ऐसा अविनाशी पर रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन नू कहा, क्योंकि नष्ट होण दी ही अवस्था विच अर्जुन सी। क्यों किहा? इसलिए कि तू अर्थात अर्जुन मेरा भगत है, अनन्य पाप नाल मेरे आसरे हैं, मैनू प्यारा है, सखा है। जिस परमात्मा दी सानू चाह है ओहो अर्थात सतगुरु परमात्मा आत्मा नाल एक होके जदों हिदायतां देण लगे तां ही वास्तविक भजन आरंभ हुंदा है। इत्थे प्रेरक दी अवस्था विच परमात्मा अते सतगुरु दोवें एक दूजे दा रूप हन। जिस पद्धर ते असी खड़े हां उसे पद्धर ते जद आप प्रभु हिरदे विच उत्तर आउन रोक थाम करन लगन डगमगाउन वेले संभालन तदे मन वश विच हो सकता है। मन बस होई तभी जब प्रेरक प्रभु बरजे। जद तक इष्ट देव रथी बन के आत्मा नाल एक होके प्रेरक दे रूप विच खड़े नहीं हो जांदे तद तक सही हिसाब नाल प्रवेश ही नहीं हो पाउंदा। ओह साधक उम्मीदवार जरूर है पर भजन उस कोल किथे। पूज्य गुरुदेव भगवान किहा करदे सन, ओए असी कई वार नष्ट हुंदे हुंदे बच गए, भगवान ने ही बचा लिया। भगवान ने इस तरह समझाया, एह किहा, असी पुछया महाराज जी की भगवान भी बोलदे ने, गलबात करदे ने? बोले हां ओए भगवान इदां गल्लां करदे हन जिवें असी तुसी गल्लां बातां करदे हां, घंटियां बद्दी गल्लां करदे हन अते सिलसिला ही नहीं मुकदा। सानू उदासी होई अते अचरज भी कि भगवान किवें बोलदे होणगे, इह तां बड़ी नवीं गल है। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, कानू घबरांदा है, तेरे नाल भी करनगे गल्लां। एक एक अक्षर सच सी उना दा कथन अते एहो सखा भाव है। सखा दी तरह ओह निराकरण करदे रहन तदे इस नष्ट होण वाली स्थिति तो साधक पार हो सकता है। अजे तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसे महापुरुष द्वारा योग दे आरंभ इस विच आउण वालियां अड़चना उना तो पार पाउण दा रस्ता दस्या। इस ते अर्जुन ने प्रश्न कीता। अर्जुन उवाच,
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति।
भगवन आप दा जन्म तां अपरम हुण होया है अते मेरे अंदर स्वास दा संचार बहुत पुराना है, ता मैं किमें मन लवां कि इस योग नू भजन दे आरंभ विच आपने ही किहा सी। इसते योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज बोले, श्री भगवान उवाच,
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।
अर्जुन मेरे अते तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हन, हे परम तप उना सारिया नू तू नहीं जानदा पर मैं जानदा हां। साधक नहीं जानदा स्वरूप स्थित महापुरुष जानदा है, अव्यक्त दी स्थिति वाला जानदा है। अर्जुन बोलिया कि आप सब दी तरह पैदा हुंदे हो? श्री कृष्ण कहंदे हन नहीं, स्वरूप दी प्राप्ति शरीर प्राप्ति तो भिन्न है। मेरा जन्म इना अखा नाल नहीं वेख्या जा सकता। मैं अजन्मा अव्यक्त शाश्वत हुंदे होए भी शरीर दे आधार वाला हां। अवधु जीवत मैं कर आसा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। शरीर दे रेंद्यां ही उस परम तत्व विच प्रवेश पाया जांदा है। लेश मात्र भी कमी है ता जन्म लेना पैंदा है। अजे तक अर्जुन श्री कृष्ण नू अपने समान देहधारी समझदा है। ओह अंतरंग प्रश्न रखदा है कि आपदा जन्म वैसा ही है जैसा सबदा है, कि आप भी शरीरां दी तरह पैदा हुंदे हो? श्री कृष्ण कहंदे हन
अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया।
मैं विनाश रहित मुड़ जन्म रहित अते समस्त प्राणियां दे स्वर विच संचारित होण ते भी अपनी प्रकृति नू अधीन करके आत्म माया तो प्रकट हुंदा हां। एक माया ता अविद्या है जो प्रकृति विच ही विश्वास दियोंदी है, नीच अते अधम योनिया दा कारण बनदी है। दूजी माया है आत्म माया जो आत्मा विच प्रवेश दियोंदी है, स्वरूप दे जन्म दा कारण बनदी है। इसे नू योग माया भी कहंदे हन, जिस तो असी अलग हां, उस शाश्वत स्वरूप नाल यह जोड़दी है, मिलन कराउंदी है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति नू अधीन करके ही प्रगट हुंदा हां। अक्सर लोकी कहंदे हन कि भगवान दा अवतार होएगा ता दर्शन कर लवांगे। श्री कृष्ण कहंदे हन कि ऐसा कुछ नहीं हुंदा कि कोई दूजा वेख सके। स्वरूप दा जन्म पिंड रूप विच अर्थात शरीरी तौर ते नहीं हुंदा। श्री कृष्ण कहंदे हन योग साधना द्वारा आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति नू स्वयं वश करके मैं क्रमवार प्रगट हुंदा हां। लेकिन केड़ियां परिस्थितियां विच?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
हे अर्जुन, जद जद परम धर्म परमात्मा लई हृदय ग्लानी अर्थात पछतावे नाल भर जांदा है, जद अधर्म दी वृद्धि नाल भगत जन पार उतारा नहीं वेख पाउंदे ता मैं आत्मा नू रचन लगदा हां। ऐसी ही ग्लानी मनु नू होई सी। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। जद थवाड़ा हृदय अनुराग नाल पार जाए उस शाश्वत धर्म लई गद गद गिरा नैन बह नीरा दी स्थिति आ जाए, जद कोशिश करके भी अनुरागी अधर्म दा पार नहीं पाउंदा, ऐसी परिस्थिति विच मैं अपने स्वरूप नूं रचदा हां। अर्थात भगवान दा आगमन केवल अनुरागी लई है, सो केवल भगतन हित लागी। एह अवतार किसे भागां वाले साधक दे अंतर विच हुंदा है। अर्जुन ने पुछया, आप प्रगट होके करदे की हो?
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
अर्जुन, साधु नाम परित्राणाय, परम साध्य अर्थात साधन योग एकमात्र परमात्मा है, जिसनू साध लैन दे बाद कुछ भी साधना बाकी नहीं रह जांदा। उस साध्य विच प्रवेश दिवाउण वाले विवेक, वैराग, शम दम इत्यादि दैवी संपत्ति नू निर्विघन प्रवाहित करन लई अते दुष्कृताम जिस तो दूषित कारज रूप लेंदे हन, उन्हां काम क्रोध राग द्वेष आदि विजाति प्रवृत्तियां नू समूल नष्ट करन लई अते धर्म नू पली प्रकार स्थिर करन लई मैं युग युग विच प्रगट हुंदा हां। युग तो भाव सतयुग त्रेता द्वापर विच नहीं, युग धर्मां दा उतार चढ़ाओ मनुखां दे सवाव उत्ते है। युग धर्म सदा ही रहे हन, मानस विच संकेत है, नित युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। युग धर्म सब दे हृदय विच नित हुंदे रहंदे हन, अविद्या नाल नहीं सगों विद्या दी राम माया प्रेरणा नाल हृदय विच हुंदे हन। जिसनु प्रस्तुत श्लोक विच आत्म माया कहा गया है, ओही राम माया है। हृदय विच राम दी स्थिति दिवा देन वाली राम तो प्रेरित है ओह विद्या। किवें समझा जाए कि हुण केड़ा युग काम कर रहा है? ता शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जद हिरदे विच शुद्ध सत गुण ही कारजरत होवे, राजस अते तामस दोनों गुण शांत हो जान, विषमतावां समाप्त हो गईयां होण, जिसदा किसे नाल द्वेष ना होवे, विज्ञान ना होवे, अर्थात इष्ट तो मार्ग दर्शन लैण अते उस उत्ते टिकण दी समर्था होवे, मन विच प्रसन्नता दा पूर्ण संचार होवे, जदों ऐसी योग्यता आ जाए तां सतयुग विच प्रवेश मिल गया। इसे तरह दो होर युगां दा वर्णन कीता है अते अंत विच तामस बहुत रजोगुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। तामस गुण भरपूर होण, कुछ थोड़े राजसी गुण भी उस विच होण, चारों पासे वैर अते विरोध होवे, ता ऐसा व्यक्ति कलयुगवासी है। जद तामसी गुण कारज करदा है ता मनुख विच आलस, निंद्रा, अणगैली दी बहुलता हुंदी है। ओह कर्तव्य जानदे होए भी उस विच प्रवृत्त नहीं हो सकदा, निखिद कर्म नू जानदे होए भी उस तो निर्वृत्ति नहीं हुंदी। इस प्रकार युग धर्मां दा उतार चढ़ाव मनुखां दी आंतरिक योग्यता ते निर्भर है। किसे ने इन्हां योग्यतावां नू चार युग कहा है ता कोई इन्हां नू चार वर्ण दा नाम देंदा है, जां कोई इन्हां नू ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम अते नीच चार श्रेणियां दे साधक कहिंदा है। हर युग विच इष्ट साथ देंदे हन। हाँ, उच्च श्रेणी विच अनुकूलता वध प्रतीत हुंदी है, निम्न युगां विच सहयोग घट प्रतीत हुंदा है। संखेप विच श्री कृष्ण कहिंदे हन कि साध्य वस्तु द्योण वाले विवेक वैराग आदि नू निर्विघन प्रवाहित करन लई अते दूषण दे कारण अर्थात करन वाले काम क्रोध राग द्वेष आदि दा पूर्ण विनाश करन लई परम धर्म परमात्मा विच स्थिर रखन लई मैं युग युग विच अर्थात हर परिस्थिति हर श्रेणी विच प्रगट हुंदा हां, वशर्ते कि ग्लानी अर्थात पछतावा होवे। जद तक इष्ट सहमति ना देन तद तक तुसी समझ ही नहीं सकोगे कि विकारां दा विनाश होया जां अजे किन्ना बाकी है। प्रवेश तो पराकाष्ठा तक इष्ट हर श्रेणी विच हर योग्यता दे नाल रहिंदे हन। उना दी प्रगटता अनुरागी दे हिरदे विच हुंदी है। भगवान प्रगट हुंदे हन तां तां सारे दर्शन करदे होणगे। श्री कृष्ण कहिंदे हन नहीं।
जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन।
अर्जुन, मेरा ओह जन्म अर्थात पछतावे दे नाल स्वरूप दी रचना अते मेरा कर्म अर्थात दुष्कर्मा दे कारणा दा विनाश साध्य वस्तु नू दिवाउण वाली समर्थावां दा निर्विघन संचार धर्म दी स्थिरता एह कर्म अते जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक हन। लौकिक नहीं, इना चरम चक्षुआ अर्थात मास दियां अखां नाल उसनू वेख्या नहीं जा सकता, मन बुद्धि नाल उसनू नाप्या नहीं जा सकता। जद ओह इतना रहस्यमई है ता उसनू वेखता कौन है। केवल यो वेती तत्वतः केवल तत्दर्शी ही मेरे इस जन्म अते कर्म नू वेखता है अते मेरा साख्यातकार करके ओह पुनर्जन्म नू नहीं प्राप्त हुंदा बल्कि मैनू प्राप्त हुंदा है। जद तत्दर्शी ही भगवान दे जन्म अते कारज नू वेख पौंदा है तां लोकी लखां दी गिनती विच भीड़ लगा के क्यों खड़े हुंदे हन कि किधरे अवतार होएगा तां दर्शन करांगे। कि आप तत्दर्शी हो? महात्मा वेश विच अज भी कई तरीकियां नाल खासकर महात्मा दे पेश दी आड़ विच बहुत सारे लोग प्रचार करदे फिरदे हन कि ओह अवतार हन जां उना दे दलाल एह प्रचार कर देंदे हन। लोकी भेड़ां वांग इज्जड़ बना के अवतार नू वेखन टुट पैंदे हन। पर श्री कृष्ण कहिंदे हन कि केवल तत्दर्शी ही वेख पौंदा है। ता तत्दर्शी किसनू कहिंदे हन? अध्याय दो विच सत असत दा निर्णय देंदे होए योगेश्वर श्री कृष्ण ने दस्या सी कि अर्जुन, असत्य वस्तु दा अस्तित्व नहीं है अते सत्य दा तिन्ना कालां विच कदे अभाव नहीं है। ता कि तुसी ऐसा कहिंदे हो? उन्होंने कहा, नहीं, तत्दर्शियां ने इसनू वेख्या। ना किसे भाषाविद अर्थात भाषा दे विद्वान ने वेख्या ना किसी समृद्धिशाली ने। ओह फिर जोर पांदे हुए कहंदे हन कि मेरा जन्म ता हुंदा है पर उसनू तत्दर्शी ही वेख सकता है। तत्दर्शी एक प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं कि पांच तत् हन जा पंजी तत् हन। इना दी गिनती सिख लई अते हो गए तत्दर्शी। श्री कृष्ण ने अगे दस्या कि आत्मा ही परम तत् है। आत्मा परम दे नाल मिलके परमात्मा हो जांदा है। आत्म साख्यातकार करन वाला ही इस जन्म नू समझ पौंदा है। सिद्ध है कि अवतार किसे अधीर अनुरागी दे हिरदे विच हुंदा है। आरंभ विच उसनू ओह समझ नहीं सकदा कि सानू कौन संकेत देंदा है, कौन मार्गदर्शन करदा है, पर परम तत् परमात्मा दे दर्शन दे नाल ही ओह वेख सकदा है, समझ सकदा है अते फिर शरीर नू त्याग के पुनर्जन्म नू प्राप्त नहीं हुंदा। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसनू वेखण वाला मैनू प्राप्त हुंदा है। तां लोका ने उना दी मूरत बना ली, पूजा करन लगे, आकाश विच किधरे उना दे निवास दी कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। उना महापुरशां दा भाव केवल इतना सी कि जे तुसी निर्धारित कर्म करो तां वेखोगे कि तुसी भी दिव्य हो। तुसी जो हो सकते हो ओह मैं हो गया हां। मैं थोड़ी संभावना हां, थोड़ा ही भविख हां। अपने भीतर तुसी जिस दिन ऐसी पूर्णता पा लोगे तां तुसी भी ओही होवोगे जो श्री कृष्ण हन। जो श्री कृष्ण दा स्वरूप है ओही तुहाडा भी हो सकदा है। अवतार किधरे बाहर नहीं हुंदा। हां जे अनुराग मई हिरदे होवे तां तुहाडे भीतर भी अवतार दी अनुभूति संभव है। ओह तुहानू उत्साह देंदे हन कि बहुत सारे लोग इस मार्ग ते चल के मेरे स्वरूप नू प्राप्त कर चुके हन।
वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता।
राग अते वैराग दोनों तो परे वीतराग अते इसे तरह पै अपै क्रोध अक्रोध दोनों तो परे अनन्य भाव नाल अर्थात अहंकार रहित मेरे आसरे हुए बहुत सारे लोग ज्ञान तप नाल पवित्र होके मेरे स्वरूप नू प्राप्त हो चुके हैं। यह हुण तो होण लग्या होवेगा। ऐसा नहीं है। यह विधान सदा रहा है। बहुत सारे पुरुष इसे प्रकार नाल मेरे स्वरूप नू प्राप्त हो चुके हैं। किस प्रकार? जिना जिना दा हिरदे अतरम दी वृद्धि वेख के परमात्मा लई ग्लानी अर्थात पछतावे नाल भर गया। उस स्थिति विच मैं अपने स्वरूप नू रचदा हां। ओह मेरे स्वरूप नू प्राप्त होंदे हन। जिसनू योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत् दर्शन कहा सी उसे नू हुण ज्ञान कहंदे हन। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप नू प्राप्त करदे हन। इत्थे एह प्रश्न पूरा हो गया। हुण ओह योग्यता दे आधार ते भजन वालियां दा श्रेणी विभाजन करते हैं।
यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।
पार्थ, जो मैनू जितनी लगन नाल भजदे हन मैं भी उना नू वैसा ही भजदा हां, उतनी मात्रा विच सहयोग देंदा हां। साधक दी श्रद्धा ही किरपा बन के उसनू मिलदी है। इस रहस्य नू जान के सुधी जन संपूर्ण भाव नाल मेरे मार्ग दे अनुसार ही वर्तदे हन। जैसा मैं वर्तदा हां जो मैनू प्रिय हन वैसा ही आचरण करदे हन। जो मैं कराउणा चाहुंदा हां ओही करदे हन। भगवान किवें भजदे हन? ओह रथी बन के खड़े हो जांदे हन, नाल चलण लगदे हन। एहो उना दा भजना है। जिन्हां तों दुष्कर्म पैदा हुंदे हन उना दा विनाश करन लई ओहो खड़े हो जांदे हन। सत विच प्रवेश दिवाउण वाले सतगुणा दा परित्राण अर्थात निस्तारा करन लई ओहो खड़े हो जांदे हन। जद तक इष्ट देव हिरदे विच रथी ना होण अते हर कदम उत्ते सावधान ना करन, तद तक कोई कैसा भी भजनीक क्यों ना होवे, लख अखां मीटे लख जतन करे, ओह प्रकृति दे इस द्वंद अर्थात कश्म कश तो पार नहीं हो सकता। ओह किमें समझेगा कि असी कितनी दूरी तय कर चुके हां, कितनी बाकी है। इष्ट ही आत्मा नाल एक रूप होके खड़े हो जांदे हन अते उसका मार्गदर्शन करदे हन। तू इत्थे है, ऐसा कर, इस तरह चल। इस तरह प्रकृति रूपी दूरी मुकाउंदे होए सहजे सहजे अग्गे वधाउंदे होए स्वरूप विच प्रवेश दिवा देंदे हन। भजन तां साधक नू ही करना पैंदा है, पर इस राह विच उसदे राही जो दूरी तय हुंदी है ओह इष्ट दी देन है। इस तरह जान के सबो मनुख हर तरह नाल मेरा अनुसरण करदे हन। ओह किस तरह वर्तदे हन?
कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।
ओहो पुरुष, इस शरीर विच कर्मां दी सिद्धि चाहुंदे होए देवतियां नू पूजदे हन। कर्म केड़ा? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म की है? यज्ञ दी प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ की है? साधना दी विधि विशेष जिस विच श्वास पर श्वास दा हवन इंद्रियां दे बाहर मुखी प्रवाह नू संयम अग्नि विच हवन कीता जांदा है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म दा मुख अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसे अध्याय विच अग्गे मिलेगा। इस आराधना दा परिणाम की है? संसिद्धिम परम सिद्धि परमात्मा, यान्ति ब्रह्म सनातनम शाश्वत ब्रह्म विच प्रवेश, परम निष्कर्मता दी स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार वर्तन वाले लोक इस मनुख लोक विच कर्म दे परिणाम परम निष्कर्मता सिद्धि लई देवत्या नू पूजदे हन, अर्थात दैवी संपत्ति नू बलवान बनाउंदे हन। तीजे अध्याय विच उन्होंने दस्या सी कि इस यज्ञ द्वारा तू देवत्यां दी वृद्धि कर, दैवी संपत्ति नू बलवान बना। ज्यों ज्यों हिरदे देश विच दैवी संपत्ति दी उन्नति होवेगी, त्यों त्यों तेरी उन्नति होवेगी। इस तरह परस्पर उन्नति करदे होए परम श्रेष्ठता नू प्राप्त हो जा। अंत तक उन्नति करदे जान दी एह अंतर क्रिया है। इसे उत्ते बल पौंदे होए श्री कृष्ण कहंदे हन कि मेरे अनुकूल वर्तन वाले लोग इस मनुख शरीर विच कर्मा दी सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत्ति नू बलवान बनाउंदे हन, जिस नाल ओहो निष्कर्मता दी सिद्धि छेती हुंदी है। ओहो असफल नहीं हुंदी, सफल ही हुंदी है। छेती दा की मतलब कि कर्म विच परवृत हुंदे सार ही फौरन एह सिद्धि मिल जांदी है। कोई छलांग लगा के पावातीत ध्यान वर्गा चमत्कार नहीं हुंदा। इसे बारे वेखो
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्।
अर्जुन, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं, चार वर्णा दी रचना मैं कीती, ता की मनुखा नू चार वर्णा विच वंड दिता। श्री कृष्ण कहंदे हन नहीं, गुण कर्म विभाग शह गुणा दे आधार ते कर्म नू चार हिस्सों विच वंडिया। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसी गुण होवेगा ता आलस, नींद, बेध्यानापुणा, कर्म विच ना प्रवृत्त होण दा सवाओ जानदे होए भी दुष्कर्म तो निर्वृत्ति ना हो सकण दी विवशता रहेगी। ऐसी हालत विच साधना आरंभ किवें करिए? 2 घंटे तुसी आराधना विच बैठदे हो, इस कर्म लई जतन करना चाहते हो, पर 10 मिनट भी ऐसा नहीं हो सकता। शरीर जरूर बैठा है, पर जिस मन नू बैठना चाहिदा है ओह हवा नाल गल्ला कर रहा है, कुतरकां दा जाल बुन रहा है, तरंग ते तरंग छाई है, तां तुसी बैठे क्यों हो? समा नष्ट क्यों करदे हो? उस समय केवल परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र स्यापी स्वभावजम, जो महापुरुष अव्यक्त दी स्थिति वाले हन, अविनाशी तत् विच स्थित हन, उना दी अते इस मार्ग उत्ते वदन वाले अपने तो अग्गे वाले लोकां दी सेवा विच लग जाओ। इस नाल दूषित संस्कार मिटदे जानगे, साधना विच प्रवेश दिवाउण वाले संस्कार सबल हुंदे जानगे। क्रमवार तामसी गुण घट जाण नाल राजसी गुणा दी प्रधानता अते सात्विक गुणा दे अल्प अर्थात थोड़े जिहे संचार नाल साधक दी समर्था वैश्य श्रेणी दी हो जाएगी। उस समय ओही साधक इंद्री संयम आत्मिक संपत्ति दा संग्रह स्वाभाविक तौर ते करन लगेगा। कर्म करदे करदे उसे साधक विच सात्विक गुणा दी बहुलता हो जाएगी। राजसी गुण घट रह जाणगे, तामसी गुण शांत रहणगे। उस समय ओही साधक खत्री श्रेणी विच प्रवेश पा लेगा। शूरवीरता, कर्म विच प्रवृत्त रहण दी समर्था, पिछे ना हटण दा सवाओ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹੀ ਕਰਮ ਹੋਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਤਰ ਸਾਤਵਿਕ ਗੁਣ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਮਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ, ਸਰਲਤਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਆਸਤਿਕਤਾ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਾਧਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿਮਨਤਮ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹੀ ਸਾਧਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਤਿਮ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੱਤਰੀ, ਨਾ ਵੈਸ਼ਿਆ, ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ, ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਕਰਮ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਨਿਯਤ ਕਰਮ, ਆਰਾਧਨਾ। ਅਵਸਥਾ ਭੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਕਿਸਨੇ ਵੰਡਿਆ? ਕਿਸੇ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੰਡਿਆ, ਅਵਿਅਕਤ ਸਥਿਤ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਕਰਤਾ ਹੀ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ?
ਨਮਾਂ ਕਰਮਾਣਿ ਲਿੰਪੰਤਿ ਨਮੇ ਕਰਮ ਫਲੇ ਸਪ੍ਰਿਹਾ ਇਤਿ ਮਾਂ ਯੋ ਭਿਜਾਨਾਤਿ ਕਰਮਭਿਰਨ ਸਬਧਯਤੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੱਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਨਾਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਵਿਅਕਤ ਸਵਰੂਪ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼।
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्।
अर्जुन, पहला हो चुके मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषां राही भी ਇਹੋ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ? ਇਹੋ ਕਿ ਜਦ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हुण भावें श्री कृष्ण भगवान महात्मा अव्यक्त योगेश्वर जां महायोगेश्वर जो भी रहे हुण ओह स्वरूप सब लई है। एहो समझ के पहला होए मोक्ष चाहण वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरशां ने कर्म आरंभ किया। इसलिए अर्जुन तू भी पूर्वजां राही सदा तो किते हुए इसे कर्म नू कर, एहो कल्याण दा एकमात्र मार्ग है। हुण तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करन उत्ते जोर दिता पर यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म की है। अध्याय दो विच उन्होंने कर्म का केवल नाम ही लिया कि हुण इसे नू तू निष्काम कर्म दे विषय विच सुन। उस दिया विशेषतावां दा वर्णन किया कि यह जन्म मरण दे महापै तो रख्या करता है। कर्म करते समय सावधानी रखण बारे कहा पर यह नहीं दस्या कि कर्म की है। अध्याय तीन विच उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग चंगा लगे जान निष्काम कर्म योग, कर्म तां करना ही पएगा। ना कर्मा नू त्यागण नाल कोई ज्ञानी हुंदा है अते ना ही कर्म आरंभ ना करण नाल कोई निष्कर्मी। हट करके जो नहीं करदे ओह कमंडी हन। इसलिए मन नाल इंद्रियां नू वश विच करके कर्म कर। केड़ा कर्म करे तां कहा नियत कर्म कर। हुण एह नियत कर्म केड़ा है तां कहा यज्ञ दी प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवा प्रश्न दिता कि यज्ञ की है, जिसनू करिए ता कर्म हो जाए। उत्थे भी उन्होंने यज्ञ दी उत्पत्ति दसी, उस दियां विशेषतावां दा वर्णन कीता पर यज्ञ नहीं दस्या जिस नाल कर्म नू समझिया जा सके। अजे तक यह स्पष्ट नहीं होया कि कर्म की है। हुण ओह कहंदे हन कि अर्जुन कर्म की है अकर्म की है इस बारे भी बड़े बड़े विद्वान मोहित हन, उसनू भली पांति समझ लेना चाहिदा है।
किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभा।
कर्म की है अते अकर्म की है इस बारे बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हन, इसलिए ओह कर्म मैं तेरे लई चंगी तरह स्पष्ट करांगा, जिसनु समझ के तू अशुभात मोक्षय से अशुभ अर्थात संसार बंधन तो पली पांत छुट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन तो मुक्ति दियांदी है। इसे कर्म नू समझन लई श्री कृष्ण फिर जोर देंदे हन।
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः।
कर्म दा स्वरूप भी जानना चाहिदा है, अकर्म दा स्वरूप भी समझना चाहिदा है। अते विकर्म अर्थात मर्जी रहित विशेष कर्म जो दैवी पुरशां राही हुंदा है उसनू भी जानना चाहिदा है, क्योंकि कर्म दी स्थिति बड़ी डूंगी है। कुछ लोकां ने विकर्म दा अर्थ निषिद्ध कर्म मन लगा के कीता गया कर्म आदि किहा है। दरअसल इत्थे वी उपसर्ग विशिष्टता दा सूचक है। प्राप्ति दे बाद महापुरुषां दे कर्म विकल्प रहित हुंदे हन। आत्म स्थित, आत्म तृप्त, आपत काम अर्थात इच्छावां पूरियां महापुरुषां नूं ना तां कर्म करन नाल कोई लाभ है अते ना ही छड़न नाल कोई हानि है। फिर भी ओह दुनिया दे हित लई कर्म करदे हन। ऐसा कर्म विकल्प रहित है, विशुद्ध है अते एहो कर्म विकर्म कहौंदा है। उदाहरण लई गीता विच जिथे जिथे किसे गल लई वी उपसर्ग लग्या है ओह उस गल दी विशेषता दा सूचक है, निकृष्टता दा नहीं। जिवें योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय, जो योग नाल युक्त है ओह विशेष रूप नाल शुद्ध आत्मा वाला, विशेष रूप नाल जित्ते हुए अंतर मन वाला आदि शब्द विशेषता दे ही सूचक हन। इसे तरह गीता विच थां थां ते वी दी वर्तों विशेष पूर्णता दसती है। इसे तरह विकर्म भी विशिष्ट कर्म दा सूचक है, जो प्राप्ति तो बाद महापुरुषां राही कीता जांदा है, जो शुभ जां अशुभ संस्कार नहीं पैदा करता। हुण तुसी विकर्म नू वेख लिया। रह गया कर्म अते अकर्म, जिसनू अगले श्लोक विच समझण दी कोशिश करो। जे इत्थे कर्म अकर्म दा भेद नहीं समझ सके तां कदे समझ नहीं आएगा।
कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्।
जो पुरुष कर्म विच अकर्म वेखे, कर्म यानी आराधना अर्थात आराधना करे अते एह भी समझे कि करण वाला मैं नहीं हां, बल्कि गुणा दी अवस्था ही चिंतन करण विच सानू लगाउंदी है, मैं इष्ट राही संचालित हां ऐसा मन्ने अते जद इस तरह अकर्म मन्नण दी समर्था आ जाए अते सिलसिलेवार तरीके नाल कर्म हुंदा रहे तां ही समझना चाहिदा है कि कर्म सही दिशा विच हो रहा है। ओही पुरुष मनुखां विच बुद्धिमान है, मनुखां विच योगी है, योग नाल युक्त बुद्धि वाला है अते सारे कर्मां दा करण वाला है। उस दे राही कर्म करण विच रत्ती पर भी त्रुटि नहीं रह जांदी है। संखेप विच आराधना ही कर्म है। कर्म नू करो अते करदे होए अकर्म समझो कि मैं ता केवल यंत्र हां, कराउण वाला इष्ट है अते मैं गुणा तो पैदा अवस्था दे अनुसार ही कोशिश कर रहा हां। जद अकर्म दी एह समर्था आ जाए अते सिलसिलेवार कर्म हुंदा रहे तां ही परम कल्याण दी स्थिति दियाउण वाला कर्म हो सकदा है। पूज्य महाराज जी किहा करदे सी कि जद तक इष्ट रथी ना हो जाए, रोक थाम ना करण लगे, तद तक सही रूप विच साधना दा आरंभ ही नहीं हुंदा। इस तो पहला जो कुछ भी कीता जांदा है ओह कर्म विच प्रवेश दी कोशिश तो वद कुछ भी नहीं। हल दा सारा भार बैल दे मोढ़ियां ते हुंदा है। फिर भी खेत जुताई हाली दा कम किया जाता है। ठीक इसे तरह साधना दा सारा पार साधक उत्ते हुंदा है, पर असल विच साधक ता इष्ट है जो उस दे पिछे लग्या होया है, जो उसका मार्गदर्शन करता है। जब तक इष्ट फैसला ना देवे तद तक तुसी समझ ही नहीं पाओगे कि साडे कोलों होया की। असी प्रकृति विच भटक रहे हाँ जां परमात्मा विच। इस तरह इष्ट दे मार्गदर्शन विच जो साधक इस आत्मिक मार्ग उत्ते अग्गे वद्दा है, खुद नू अकर्ता समझ के सिलसिलेवार कर्म करता है, उही बुद्धिमान है। उसकी जानकारी यथार्थ है, उही योगी है। जिज्ञासा स्वाभाविक है कि कर्म करते ही रहांगे जां कदे कर्मा तो छुटकारा भी मिलेगा। इसते योगेश्वर कहते हैं, श्री कृष्ण दे अनुसार जो कुछ कीता जांदा है वह कर्म नहीं है। कर्म एक नियत कीती हुई क्रिया है। नियतम कुरु कर्म त्वम। अर्जुन तू नियत कर्म नु कर। नियत कर्म की है ता दस्या यज्ञ नु कारज रूप देना ही कर्म है। ता इस तो इलावा जो कुछ कीता जांदा है कि ओह कर्म नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, इस यज्ञ नु कारज रूप देन तो वक जो कुछ कीता जांदा है ओह इसे लोक दा बंधन है, ना कि कर्म। तदर्थ कर्म। अर्जुन उस यज्ञ दी पूर्ति लई पली भांत आचरण कर, अते जद यज्ञ दा स्वरूप स्पष्ट कीता ता ओह शुद्ध रूप विच आराधना दी एक विधि विशेष है जो उस आराध्य देव तक पहुंचा के उसे विच लीन कर देंदी है। इस यज्ञ विच इंद्रियां दा दमन, मन दा शमन अर्थात शुद्धिकरण, दैवी संपत्ति दी प्राप्ति आदि दसते हुए अंत नू कहा, बहुत सारे योगी प्राण अते अपान अर्थात शरीर दी दूषित हवा दी गति दा निरोध करके प्राणायाम दे माहर हो जांदे हन, ता ना अंदरों संकल्प उठता है अते ना बाहरी जगत दा संकल्प मन दे अंदर प्रवेश कर सकता है। ऐसी स्थिति विच चित दा पूरा निरोध अते निरुद्ध चित दे वी लीन होण दे समय ओह पुरुष यांति ब्रह्म सनातनम शाश्वत सनातन ब्रह्म विच प्रवेश पा जांदा है। एहो सारा यज्ञ है जिसनू कारज रूप देण दा नाम कर्म है। इसलिए कर्म दा शुद्ध अर्थ है आराधना, कर्म दा अर्थ है भजन, कर्म दा अर्थ है योग साधना नू चंगी तरह पूरा करना, जिसका विस्तृत वर्णन अगे इसे अध्याय विच आ रहा है। एथे कर्म अते अकर्म दी केवल वंड कीती गई है, जिस नाल कर्म करदे समय उसनू सही दिशा दित्ती जा सके अते उस उत्ते चलिया जा सके।
यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः।
अर्जुन यस्य सर्वे समारंभा, जिस पुरुष राही पूर्णता नाल आरंभ कीती हुई क्रिया क्रमवार वद्दे वद्दे इतनी सूक्ष्म हो गई है कि वासना अते मन दे संकल्प विकल्प तो उपर उठ गई है। उस समय आखरी संकल्प भी मिट जान नाल जिसनू असी नहीं जानदे जिसनू जानन लई असी इच्छुक सां उस परमात्मा दी प्रतख जानकारी हो जांदी है। क्रिया करन दे मार्ग ते चल के परमात्मा दी प्रतख जानकारी दा नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान दे नाल ही दग्ध कर्माणम कर्म सदा लई पस्म हो जांदे हन। जिसनू प्राप्त करना सी कर लिया, अग्गे कोई सत्ता नहीं जिसकी खोज करिए, इसलिए कर्म करके ढूंढिए भी तां किसनू। उस जानकारी दे नाल कर्म दी जरूरत खत्म हो जांदी है। ऐसी स्थिति वालियां नू ही बोध स्वरूप महापुरुषा ने पंडित कहा है। उना दी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करदा की है, रहंदा किवें है, उसकी रहनी दसते हैं।
त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः।
अर्जुन, ओह पुरुष संसारिक आश्रय तो रहित होके नित वस्तु परमात्मा विच ही तृप्त रह के कर्मां दे फल परमात्मा दा मोह भी त्याग के कर्म विच चंगी तरह वर्तदा होया भी कुछ नहीं करदा।
निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।
जिसने अंतर्मन अते शरीर नू जित लिया है, भोगां दियां सब वस्तुआं त्याग दित्तियां हन, ऐसे आस रहित पुरुष दा शरीर ही कर्म करदा नजर आउंदा है। दरअसल ਉਹ ਕਰਦਾ ਧਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਭੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਐਸੇ ਆਸ ਰਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਧਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਗਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਯਦ੍ਰਿੱਛਾ ਲਾਭ ਸੰਤੁਸ਼ਟੋ ਦ੍ਵੰਦਵਾਤੀਤੋ ਵਿਮਤਸਰ ਸਮ ਸਿੱਧਾਵ ਸਿੱਧੋ ਚ ਕ੍ਰਿਤਵਾਪਿ ਨ ਨਿਬਧਯਤੇ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਰਾਗ ਦੁਏਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਆਦਿ ਦੁੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਮਤ ਸਰਹ ਈਰਖਾ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਯੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।
अर्जुन, यज्ञ याचरतः कर्म, यज्ञ दा आचरण ही कर्म है, अते साक्षात्कार दा नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ दा आचरण करके साक्षात्कार दे नाल ज्ञान विच स्थित संग दोष अते असक्ति तो रहित मुक्त पुरुष दे सारे कर्म पली पांति वलीन हो जांदे हन। ओह कर्म कोई परिणाम पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मां दा फल परमात्मा उना तो वक्ख नहीं रह गया। हुण फल नू केड़ा फल लगेगा? इसलिए उना मुक्त पुरशां नू अपने लिए कर्म करन दी लोड़ नहीं रहिंदी। फिर भी लोक हित लई ओह कर्म करदे ही हन, अते करदे होए भी ओह इना कर्मां विच लिप्त नहीं हुंदे। जद करदे हन तां लिप्त क्यों नहीं हुंदे? इस्ते कहंदे हन,
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना।
ऐसे मुक्त पुरुष दा समर्पण ब्रह्म है। हवि अर्थात हवन दी वस्तु ब्रह्म है। अग्नि भी ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि विच ब्रह्म रूपी कर्ता राही जो हवन कीता जांदा है ओह भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसते कर्म ब्रह्म दास स्पर्श करके ब्रह्म दी समाधि विच लीन हो चुके होण, उसे विच एक मिक हो चुके होण, ऐसे महापुरुष लई जो प्राप्त होन योग है ओह भी ब्रह्म ही है। ओह करदा तरदा कुछ नहीं, केवल लोक हित लई कर्म विच वर्तदा है। एह तां प्राप्ति वाले महापुरुष दे लक्षण हन। पर कर्म विच प्रवेश लैण वाले आरंभक साधक केड़ा यज्ञ करदे हन? हुण इत्थे उसे यज्ञ नू स्पष्ट करदे हन।
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहवती।
पिछले श्लोक विच योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा स्थित महापुरुष ते यज्ञ दा निरूपण कीता, पर दूजे योगी जो अजे उस तत्त विच स्थित नहीं हन, क्रिया विच प्रवेश करन वाले हन, ओह आरंभ कित्थों करन? इस बारे ओह कहंदे हन कि दूजे योगी लोक दैवम यज्ञम अर्थात दैवी संपत्ति नू अपने हिरदे विच बलवान करदे हन। जिस लई ब्रह्मा दा निर्देश सी कि इस यज्ञ राही तुसी लोक देवत्यां अर्थात सत गुणा दी उन्नति करो। ज्यों ज्यों हिरदे देश विच दैवी संपत्ति अर्जित होवेगी ओही थोड़ी प्रगति होवेगी, अते क्रमवार परस्पर उन्नति करके परम तत् नू प्राप्त करो। दैवी संपत्ति नू हिरदे देश विच बलवान करना प्रवेश श्रेणी दे योगियां दा यज्ञ है। ओही दैवी संपत्ति अध्याय 16 दे आरंभक तीन श्लोकां विच वर्णित है। जो है तां सब विच पर महत्वपूर्ण कर्तव्य समझ के उसनू जागृत करो, उस विच लगो। इसे वल संकेत करदियां योगेश्वर ने कहा कि अर्जुन तू सोग ना कर, क्योंकि तू दैवी संपत्ति नू प्राप्त होया है। तू मेरे अंदर निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप नू प्राप्त करेगा, क्योंकि यह दैवी संपत्ति परम कल्याण ले ही है, अते इसते विरुद्ध आसुरी संपत्ति नीच अते अदम योनिया अर्थात जूना दा कारण है। इसे आसुरी संपत्ति दा हवन होन लगता है, इसलिए यह यज्ञ है अते इथों ही यज्ञ दा आरंभ है। दूजे योगी ब्रह्माग्नो पर ब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि विच यज्ञ दे द्वारा ही यज्ञ पूरा करते हैं। श्री कृष्ण ने अगे दस्या कि इस शरीर विच अधि यज्ञ मैं हाँ, अर्थात यज्ञा दा अधिष्ठाता यानी यज्ञ जिस विच समौंदे हन ओह पुरुष मैं हाँ। श्री कृष्ण एक योगी सन, सतगुरु सन। इस तरह दूजे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि विच यज्ञ अर्थात यज्ञ रूपी सतगुरु नू उद्देश बना के यज्ञ नू पूरा करदे हन। संखेप विच सतगुरु दे स्वरूप दा ध्यान करदे हन।
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति।
दूजे योगी जन सब इंद्रियां अर्थात कन अखां त्वचा जीव नक दा संयम रूपी अग्नि विच हवन करदे हन, अर्थात इंद्रियां नू विषयां तो समेट के संयमित कर लैंदे हन। इत्थे अग नहीं जलदी, जिवें अग विच पौंदियां हर चीज पसम हो जांदी है, ठीक इसे प्रकार संयम विच भी एक अग्नि है जो इंद्रियां दे सारे बाहर मुखी प्रवाह नू सार देंदा है। दूजे योगी लोक शब्द आदि अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस अते गंध विषयां नू इंद्रियां रूपी अग्नि विच हवन कर देंदे हन, अर्थात उना दा भाव बदल के साधना परक बना लैंदे हन। साधक नू संसार विच रह के ही तां भजन करना है। संसारक लोकां दे भले बुरे शब्द उनां नाल टकराउणगे ही। विषयां नू उत्तेजित करन वाले ऐसे शब्दां नू सुनदिया ही साधक उनां दे भाव नू योग वैराग सहायक वैराग उत्तेजक भावां विच बदल के इंद्रियां रूपी अग्नि विच हवन कर देंदे हन। जिवें कि एक वारी अर्जुन अपने ध्यान विच मगन सी, अचानक उसते कन्ना विच संगीत लहरां गूंज उठियां। उसने सिर चुक के वेख्या ता उर्वशी खड़ी सी जो एक वैश्वा सी। सारे उसते रूप उत्ते मोहित होके चूम रहे सन, पर अर्जुन ने उसनू स्नेहमयी अखां नाल मां दे रूप विच वेख्या। उस संगीत रूपी शब्द तो आउण वाले विकार मिट गए, इंद्रियां दे अंदर ही समा गए। इत्थे इंद्री ही अग्नि है, ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਵ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਸਪਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧਕ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਧਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈ, ਅਨੈ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਧਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਯੱਗ ਕਰਤਾ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈ ਅਪ੍ਰੈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਯੱਗ।
ਸਰਵਾਣੀਂਦ੍ਰਿਯਕਰਮਾਣਿ ਪ੍ਰਾਣਕਰਮਾਣਿ ਚਾਪਰੇ ਆਤਮਸੰਯਮਯੋਗਾਗਨੌ ਜੁਹਵਤਿ ਗਿਆਨਦੀਪਿਤੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਯੱਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੈਵੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਟਕਰਾਉਣ ਤੇ ਬਲਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਯੋਗੀ ਜਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਥਿਤੀ ਰੂਪੀ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸੰਯਮ ਦੀ ਪਕੜ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਤਮ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੱਗ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਯੱਗ ਦੀ ਪਰਾਕਾਸ਼ਠਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਯੱਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦ੍ਰਵਯ ਯਗਿਆਸਤਪੋ ਯਗਿਆ ਯੋਗ ਯਗਿਆਸਤਥਾ ਪਰੇ ਸਵਾਧਿਆਯ ਗਿਆਨ ਯਗਿਆਸ਼ਚ ਯਤਯ ਸੰਸ਼ਿਤ ਵ੍ਰਤਾ।
ਅਨੇਕ ਲੋਕੀ ਦ੍ਰਵਯ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਸਹਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਵ ਅਰਥਾਤ ਸਮੱਗਰੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ, ਫਲ, ਜਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਮ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਯੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਦ੍ਰਵਯ ਯੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਪੋ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਵਾਉ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੱਗ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਪਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਾਧਕ ਸ਼ੂਦਰ ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ वैश्य साधक दैवी संपत्ति दे संग्रह राही, खत्री काम क्रोध दे निरोध राही, अते ब्राह्मण ब्रह्म विच प्रवेश दी योग्यता दे पद्धर उत्ते इंद्रियां नू तपौंदा है। सब नू एक समान मेहनत करनी पैंदी है। असल विच यज्ञ इको है, अवस्था दे अनुसार उच्चियां नीवियां श्रेणियां हुंदियां जांदियां हन। पूज्य महाराज जी कहंदे सन, मन सहित इंद्रियां अते शरीर नू लक्ष्य दे अनुरूप तपाउणा ही तप कहा जांदा है। एह थवाडे लक्ष्य तों दूर भज्जणगे, इना नू समेट के उद्धर ही लगाओ। कई लोकी योग यज्ञ दा आचरण करते हन, प्रकृति विच पटकदे होए आत्मा दा प्रकृति तों परे परमात्मा नाल मिलन दा नाम योग है। योग दी परिभाषा अध्याय 6 दे 23वें श्लोक विच स्पष्ट है। आम तौर ते दो चीजां दा मिलन योग कहुंदा है। कागज नाल कलम मिल गई, थाली अते मेज मिल गए, तां की योग हो गया? नहीं, एह तां पंच भूतां तो बने पदार्थ हन, इको हन, दो किथे? दो प्रकृति अते पुरुष हन। प्रकृति विच स्थित आत्मा जद अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा विच प्रवेश पा जांदा है, तां प्रकृति पुरुष विच समा जांदी है। एहो योग है। इसलिए अनेक लोकी इस मिलन विच सहायक शम दम अर्थात शमन दमन आदि नियमों दा भली भांति आचरण करदे हन। योग यज्ञ करन वाले अते अहिंसा आदि कठिन वर्तां नाल युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च खुद दा अध्ययन अपने ही रूप दा अध्ययन करन वाले ज्ञानी यज्ञ दे करता हन। इत्थे योग दे अंगा अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अते समाधि नू अहिंसा आदि कठिन वर्त कहा गया है। कई लोकी स्वाध्याय अर्थात अपने खुद दा अध्ययन करदे हन। पुस्तक पढ़ना तां स्वाध्याय दा केवल आरंभक पद्धर ही है। शुद्ध स्वाध्याय है अपने आप दा अध्ययन, जिस नाल स्वरूप दी प्राप्ति हुंदी है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। यज्ञ दा अगला चरण ओह दसते हन।
अपाने जुहवति प्राणम् प्राणे पानम् तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा।
अनेक योगी अपान वायु अर्थात शरीर तो बाहर आउंदी दूषित हवा विच प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन जां ताजी हवा दा हवन करदे हन, अते उसे तरह प्राण वायु विच अपान वायु दा हवन करदे हन। इस तो वद सूक्ष्म अवस्था आउणते कई योगी जन प्राण अते अपान दोवियां दी गति रोक के प्राणायाम प्रायण अर्थात सिद्ध हो जांदे हन। श्री कृष्ण जिसनू प्राण अपान कहंदे हन, उसे नू महात्मा बुद्ध अनापान कहंदे हन। इसे नू उन्होंने श्वास पर श्वास भी कहा है। प्राण ओह श्वास है जिसनू तुसी अंदर खिचदे हो, अते अपान ओह श्वास है जिस नूं तुसीं बाहर छड़दे हो। योगियां दी अनुभूति है कि तुसीं स्वास दे नाल बाहरी वायुमंडल दे संकल्प भी ग्रहण करते हो। इसे तरह पर स्वास राही अपने अंदरूनी भले बुरे विचारां नूं बाहर सुटदे हो। किसे बाहरी संकल्प नूं ग्रहण ना करना प्राण दा हवन है, अते अंदर किसे संकल्प नूं उठन ना देना अपान दा हवन है। ना अंदरों किसे संकल्प दा अंकर फुटे, अते ना ही बाहरी दुनिया विच होण वाले विचार अंदर असर कर सकन। इस तरह प्राण अते अपान दोवां दी गति सम हो जाणते प्राणा दा याम अर्थात निरोध हो जांदा है। एहो प्राणायाम है, एहो मन नूं जितण दी अवस्था है। प्राणा दा रुकना अते मन दा रुकना इक्को गल है। हर महापुरुष ने इस गल नूं दोहराया है, वेदां विच इस दी चर्चा है। इसे नूं पूज्य महाराज जी कहा करदे सन, ओए इक्को नाम चार श्रेणियां विच जपया जांदा है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती ते परा। बैखरी उसनू कहंदे हन जो व्यक्त हो जावे। नाम दा इस तरह उच्चारण होवे कि तुसी सुनो, अते बाहर भी कोई बैठिया होवे ता उसनू भी सुनाई पए। मध्यमा अर्थात मध्यम आवाज विच जाप जिसनू केवल तुसी ही सुनो, नाल बैठा होया व्यक्ति भी उस उच्चारण नू ना सुन सके। यह उच्चारण कंठ तो हुंदा है। सहजे सहजे नाम दी धुनी बन जांदी है, डोर लग जांदी है। साधना होर सूक्ष्म हो जानते पश्यंती अर्थात नाम नू वेखण दी अवस्था आ जांदी है। फिर नाम नू जपिया नहीं जांदा, एहो नाम साह विच ढल जांदा है। मन नू दृष्टा बना के खड़ा कर दियो, केवल वेखदे रहे कि साह की कहंदा है। साह आउंदा कदों है, बाहर जांदा कदों है, कहंदा की है। महापुरशां दी कहनी है कि एह साह नाम तो सिवाए होर कुछ कहंदा ही नहीं। साधक नाम दा जाप नहीं करदा, सिर्फ उस तो उठण वाली धुनी नू सुनदा है, साह नू सिर्फ वेखदा है। इसलिए इस नू पश्यंती कहंदे हन। पश्यंती विच मन नू दृष्टा दे रूप विच खड़ा करना पैंदा है। पर साधना होर उच्ची हो जानते सुनना भी नहीं पैंदा। बस एक बार सुरत नू लगा दियो, आपे सुनाई देवेगा। जपे ना जपावे, अपने से आवे। ना खुद जपो, ना मन नू सुनन लई मजबूर करो, अते जाप चलदा रहे। इसे दा नाम है अजपा। ऐसा नहीं कि जाप आरंभ ही ना करो ते समझो कि हो गया अजपा। जे किसे ने जाप शुरू नहीं कीता ता अजपा नाम दी कोई चीज भी उस कोल नहीं होनी। अजपा दा अर्थ है असी ना जपिए पर जाप साडा साथ ना छड़े। एक वारी सुरत दी डोर केवल लगा दियो ता जाप प्रवाहित हो जाए अते निरंतर चलदा रहे। इस स्वाविक जाप दा नाम अजपा है अते एहो पराबाणी दा जाप है। एह प्रकृति तो परे दे तत् परमात्मा विच प्रवेश दिओंदा है। इस तो अगे बाणी विच कोई परिवर्तन नहीं है। परम दा मार्गदर्शन करा के उस विच विलीन हो जांदी है, इसलिए इसनू परा कहंदे हन। प्रस्तुत श्लोक विच योगेश्वर श्री कृष्ण ने सिर्फ श्वास उत्ते ध्यान रखन लई कहा, जदकि अगे ओह आप ओम ओम दे जाप उपर जोर पाउंदे हन। गौतम बुद्ध भी अनापान सत्य विच श्वास पर श्वास दी ही चर्चा करदे हन। आखिर ओह महापुरुष कहना की चाहुंदे हन? दरअसल आरंभ विच बैखरी, उस तो उत्ते मध्यमा, फिर उस तो उत्ते होण ते जाप दी पश्यंती अवस्था विच श्वास पकड़ विच आउंदा है। उस अवस्था विच जाप श्वास विच ही टलिया मिलेगा, तां फिर जपिए की? फिर तां श्वास नू सिर्फ वेखना ही है, इसलिए प्राण अपान मात्र ही कहा। नाम जपो एहे नहीं कहा, क्योंकि एहे कहन दी लोड़ ही नहीं है। जे ऐसा कहंदे हन तां साधक गुमराह होके हेठलियां श्रेणियां विच भटकन लगेगा। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव भगवान अते हरेक महापुरुष जो इस रस्ते तो गुजरे हन, सारे एक गल कहंदे हन, बैखरी अते मध्यमा नाम जाप दे केवल प्रवेश द्वार हन। पश्यंती तो ही नाम विच प्रवेश मिलता है। परा विच नाम धारावाही हो जाता है, जिस नाल जाप साथ नहीं छड़दा। मन श्वास नाल जुड़िया है। जद श्वास उत्ते दृष्टि है, श्वास विच नाम टल चुका है, अंदरों ना कोई संकल्प उठता है अते ना ही बाहरी वायुमंडल दे संकल्प अंदर प्रवेश कर सकते हन, ता मन उत्ते जित दी अवस्था है। इसे दे नार यज्ञ दा परिणाम निकल आउंदा है।
अपरेनियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः।
दूजे अर्थात लोकी जो नियमित आहार अर्थात भोजन आदि करण वाले हन, ओह प्राण दा प्राण विच ही हवन करदे हन। पूज्य महाराज जी कहा करदे सन, योगी दा आहार दृढ़, आसन दृढ़ अते नींद दृढ़ होने चाहिदे हन। आहार विहार उत्ते नियंत्रण बहुत जरूरी है। ऐसे अनेकां योगी प्राण दा प्राण विच ही हवन कर देंदे हन, अर्थात श्वास लैण उत्ते ही ध्यान टिकाई रखते हन, पर श्वास उत्ते ध्यान नहीं देंदे। सह आया तां सुनिया ओम, फिर सह आया तां ओम, फिर सह आया तां ओम सुनदे रहे। इस तरह यज्ञां द्वारा नष्ट पाप वाले एह सारे पुरुष यज्ञ दे जानकार हन। इन्हां दसियां होईयां विधियां विच्चों किसे नाल भी जो यज्ञ करदे हन, ओह सारे यज्ञ दे ज्ञाता हन। हुण यज्ञ दा परिणाम दसदियां ओह कहंदे हन,
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम।
कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञशिष्टामृतभुजो यज जिसकी उत्पत्ति करता है, जिसनु बाकी छड़दा है, ओह है अमृत, जिसकी प्रतक जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञान अमृत नु भोगण अर्थात प्राप्त करण वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम शाश्वत सनातन पर ब्रह्म नु प्राप्त हुंदे हन। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूरी हुंदियां ही सनातन पर ब्रह्म विच प्रवेश दिवा देंदी है। यज्ञ ना करिए ता संकट की है। श्री कृष्ण कहंदे हन कि यज्ञ रहित पुरुष नु दुबारा इस मनुख लोक अर्थात मनुख शरीर भी नहीं मिलता, ता होर दूजे लोक किवें सुखी होणगे। उना लई ता तिरियक योनिया अर्थात पशु पक्षी दियां जूना ही सुरक्षित हन, इस तो वद कुछ नहीं। इसलिए यज्ञ करना मनुख मात्र लई बड़ा जरूरी है।
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे।
इस तरह उपरोक्त कई प्रकार दे यज्ञ वेद वाणी विच कहे गए हन। ब्रह्म दे मुख तो विस्तार नाल उच्चारे गए हन। प्राप्ति तो बाद महापुरुषां दे शरीरां नू पर ब्रह्म धारण कर लेंदा है। ब्रह्म तो अपिन अवस्था वाले उना महात्मावां दी बुद्धि केवल यंत्र ही हुंदी है। उना दे राही ओह ब्रह्म ही बोलदा है। उना दी वाणी अर्थात कथना विच इना यज्ञां दा विस्तार दस्या गया है। इना सब यज्ञां नू तू कर्म जान विधि कर्म तो पैदा होया जान एहो पहला भी कहा गया है। यज्ञ कर्म समुद भव, इस तरह क्रियात्मक रूप विच चल के उना नू जान लैण नाल अर्थात हुणे कहा सी कि यज्ञ करके जिन्हां दा पाप नष्ट हो चुका होवे ओही यज्ञ दे ज्ञाता हन। अर्जुन तू विमोक्षय से संसार बंधन तो पूरा छुट जाएगा। इथे योगेश्वर ने कर्म नू पूरी तरह स्पष्ट कर दिता। ओहो हरकत कर्म है जिस नाल उपरोक्त यज्ञ पूरे हुंदे हन। हुण दैवी संपत्ति दा अर्जन सत गुरु दा ध्यान इंद्रियां दा संयम श्वास दा परश्वास विच हवन परश्वास दा श्वास विच हवन प्राण अपान दी गति दा निरोध जो खेती करन नाल हुंदा होवे व्यापार नौकरी जां राजनीति करन नाल हुंदा होवे तां तुसी करो। यज्ञ तां ऐसी क्रिया है जो पूरी हुंदियां ही तुरंत पर ब्रह्म विच प्रवेश दिवा देंदी है। जे बाहरी किसे भी कारज नाल तुसी तुरंत ब्रह्म विच प्रवेश पा जांदे हो तां करो। दरअसल एह सारे दे सारे यज्ञ चिंतन दियां अंदरूनी क्रियावां हन, आराधना दे चित्रण हन, जिना नाल आराध्य देव विदित हुंदा है। यज्ञ उस आराध्य तक दी दूरी तय करन दी निर्धारित क्रिया विशेष है। एह यज्ञ श्वास परश्वास प्राणायाम आदि जिस क्रिया नाल पूरे हुंदे हन उस कार्य विधि दा नाम कर्म है। कर्म दा शुद्ध अर्थ है आराधना चिंतन। अक्सर लोकी कहंदे हन कि संसार विच कुछ भी कीता जाए ओही कर्म है। कामना तो रहित होके कुछ भी कर दे जाओ, हो गया निष्काम कर्म योग। कोई कहता है कि ज्यादा लाभ ले तुसी विदेशी कपड़े बेचते हो ता तुसी सकामी हो। देश सेवा ले स्वदेशी चीजा वेचो तक हो गया निष्काम कर्म योग। निष्ठा पूर्वक नौकरी करो, हानि लाभ दी चिंता तो रहित होके व्यापार करो ता हो गया निष्काम कर्म योग। जय पराजय दी भावना तो मुक्त होके युद्ध करो, चोणा लड़ो, हो गया निष्काम कर्मी। मरोगे ता मुक्ति हो जाएगी, असल विच ऐसा कुछ भी नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने साफ शब्दां विच दस्या है कि इस निष्काम कर्म विच निर्धारित क्रिया एक ही है। अर्जुन तू निर्धारित कर्म नू कर। यज्ञ दी प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ की है श्वास पर श्वास दा हवन, इंद्रियां दा संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष दा ध्यान, प्राणायाम प्राणा दा निरोध, एहो मन नू जितन दी अवस्था है। मन दा ही प्रसार जगत है। श्री कृष्ण दे ही शब्दां विच उना पुरुषा ने जड़ चेतन जगत इत्थे ही जित लिया जिन्हां दा मन समता स्थिति विच स्थिर है। भला मन दी समता स्थिति अते जगत नू जितन विच की संबंध है? जे जगत नू जित ही लिया ता ओह रुकिया किथे? ता दस्या कि ओह ब्रह्म निर्दोष अते सम है। इधर मन भी निर्दोष अते समता स्थिति वाला हो गया है, इसलिए ओह ब्रह्म विच स्थित हो जांदा है। सारांश विच मन दा प्रसार ही जगत है। चल अचल जगत ही हवन समग्री दे रूप विच है। मन दे निरोध नाल ही यज्ञ दा परिणाम निकल आउंदा है। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस ज्ञान अमृत नू पान करन वाला पुरुष सनातन ब्रह्म विच प्रविष्ट हो जांदा है। एह सारे यज्ञ ब्रह्म स्थित महापुरुषां दी बाणी राही कहे गए हन। ऐसा नहीं कि वक्ख वक्ख संप्रदाय दे साधक वक्ख वक्ख किस्मां दे यज्ञ करदे हन, बल्कि एह सारे यज्ञ एक ही साधक दियां उच्चियां नीवियां अवस्थावां हन। एह यज्ञ जिस नाल होण लगे उस क्रिया दा नाम कर्म है। संपूर्ण गीता विच एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जो संसारक कार विहार दा समर्थन करे। अक्सर यज्ञ दा नाम सुन के लोकी बाहर एक यज्ञ वेदी बना के तिल जौ लेके स्वाहा बोलदे हुए हवन शुरू कर देंदे हन। एह एक प्रथा है, एह एक धोखा है। द्रव्य यज्ञ दूजा है जिसनू श्री कृष्ण ने कई बार दस्या, लेकिन पशु बलि वस्तु दह नाल इसका कोई संबंध नहीं।
श्रेयां द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
अर्जुन संसारक द्रव्यां नाल सिद्ध होण वाले यज्ञ दी तुलना विच ज्ञान यज्ञ अर्थात जिसका परिणाम ज्ञान अर्थात साक्षात्कार है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अमृत तत्व दी जानकारी दा नाम ज्ञान है, ऐसा यज्ञ श्रेष्ठ है, परम कल्याणकारी है। हे पार्थ, सारे कर्म ज्ञान विच समाहित हो जांदे हन। परिसमाप्यते पली पांत समाहित हो जांदे हन। ज्ञान यज्ञ दी पराकाष्ठा है। उस तो बाद कर्म करन नाल ना कोई लाभ है अते ना ही छड़ देन नाल उस महापुरुष की कोई हानि ही हुंदी है। इस तरह भौतिक द्रवा नाल होण वाले यज्ञ भी यज्ञ हन, पर जिसका परिणाम साख्यातकार है उस ज्ञान यज्ञ की तुलना विच बड़े घट हन। तुसी करोड़ों का हवन करो, सैकड़िया यज्ञ वेदियां बना लो, सच्चे पासे धन लगाओ, साधु संत महापुरशां दी सेवा विच द्रब लगाओ, पर इस ज्ञान यज्ञ दी तुलना विच ओह बड़े थोड़े हन। दरअसल यज्ञ स्वास पर स्वास दा है, इंद्रियां दे संयम दा है, मन दे निरोध दा है, जिवें कि श्री कृष्ण हुणे दस आए हन। इस यज्ञ नू प्राप्त किथे कीता जाए, उसकी विधि कित्थे सिखिए? मंदरां मस्जिदां गुरद्वारियां या गिरजियां विच मिलेगा जा पुस्तकां विच, तीर्थ यात्रा विच मिलेगा जा इशनान करन नाल मिलेगा? श्री कृष्ण कहंदे हन नहीं, उसका तां इक्को स्रोत है, तत् स्थित महापुरुष। वेखो
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः।
इसलिए अर्जुन तू तत्दर्शी महापुरुष ते पास जाके पली प्रकार निम्रता नाल झुक के अर्थात दंडवत प्रणाम करके अहंकार त्याग के शरणी लग के पली प्रकार सेवा करके निष्कपट भाव नाल प्रश्न करके उस ज्ञान नू जान। ओह तत् नू जानन वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान दा उपदेश करनगे, साधना मार्ग ते चलाउणगे। समर्पित भाव नाल सेवा करन दे बाद ही इस ज्ञान नू सिखण दी समर्था आउंदी है। तत्दर्शी महापुरुष परमात्मा दा प्रतख मार्गदर्शन कराउण वाले हन। ओह यज्ञ दी विधि विशेष ते ज्ञाता हन अते ओही विधि तुहानू भी सिखाउणगे। जे यज्ञ कुछ होर चीज हुंदी तां ज्ञानी तत्दर्शी दी की लोड़ सी? खुद भगवान दे सामने ही तां अर्जुन खड़ा सी, भगवान उसनू तत्दर्शी दे पास क्यों भेजदे हन? दरअसल श्री कृष्ण एक योगी सन, उन्हां दा भाव यह है कि अज तां अनुरागी अर्जुन मेरे सामने हाजिर है, भविख विच अनुरागियां नू किधरे भरम ना हो जाए कि श्री कृष्ण तां चले गए, हुण किसदी शरण जाइए? इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्दर्शी महापुरुष कोल जाओ, ओह ज्ञानी जन तुहानू उपदेश करनगे। अते
यज्ञात्वान पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि।
उस ज्ञान नू उना कोलों समझ के तू इस तरह फेर कदे मोह नू प्राप्त नहीं होवेगा। उना कोलों प्राप्त जानकारी नाल उस उत्ते चलदे होए तू अपनी आत्मा विच सारे भूतां नू अर्थात सारे प्राणियां नू वेखेगा, अर्थात सारे प्राणियां विच इसे आत्मा दा प्रसार वेखेंगा। जदों हर पासे एक ही आत्मा दा प्रसार वेखण दी समर्था आ जाएगी, उस तो बाद तू मेरे अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए परमात्मा दी प्राप्ति दा साधन तत्स्थित महापुरुष है। ज्ञान दे बारे, धर्म अते शाश्वत सत दे बारे श्री कृष्ण दे अनुसार किसे तत्दर्शी तो ही पुछण दा विधान है।
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि।
पावें तू सब पापियां तो भी वद पाप करण वाला है, ता भी ज्ञान रूपी बेड़ी राही सारे पापां तो निरसंदेह पार हो जावेगा। इसका भाव तुसी एह ना समझो कि वद तो वद पाप करके कदे भी पार हो जावांगे। श्री कृष्ण दा भाव बस एहो ही है कि किधरे तुसी इस परम विच ना रहो कि असी ता बड़े पापी हां, असी पार नहीं लगांगे। ऐसी कोई गुंजाइश ना कड्डो। इसलिए श्री कृष्ण उत्साह अते भरोसा देंदे हन कि सारे पापियां दे पाप समूह तो भी वद पाप करन वाला बंदा भी तत्दर्शियां तो प्राप्त ज्ञान रूपी बेड़ी राही निरसंदेह सारे पापां तो भली भांत पार हो जाएगा। इस तरह
यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।
अर्जुन जिवें बलदी होई अग बालण नू भस्म कर देंदी है, ठीक उसे तरह ज्ञान रूपी अग सारे कर्मां नू भस्म कर देंदी है। यह ज्ञान दी प्रवेश स्थिति नहीं है कि जिथे यज्ञ विच प्रवेश मिलता है, सगों यह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार दी पराकाष्ठा दा चित्रण है, जिस विच पहला बाहरी कर्म भस्म हुंदे हन अते फिर प्राप्ति दे नाल चिंतन कर्म भी उसे विच समाहित हो जाते हैं। जिसनू पौना सी पा लिया, हुण अगे चिंतन करके किसनू ढूंढिए। ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मां दा अंत कर लेंदा है। ओह साक्षात्कार होवेगा किथे, बाहर होवेगा जां अंदर? इसते ओह कहंदे हन
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति।
इस संसार विच ज्ञान वर्गा पवित्र करण वाला बेशक होर कुछ नहीं है। उस ज्ञान अर्थात साक्षात्कार नू तू खुद अर्थात दूजा नहीं, योग दी परिपक्व अवस्था विच अर्थात आरंभ विच नहीं, अपनी आत्मा दे अंदर हिरदे देश विच ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं। इस ज्ञान लई केड़ी योग्यता चाहिदी है? योगेश्वर दे ही शब्दां विच
श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति।
श्रद्धावान, तत्पर अते संयमित इंद्रियां वाला पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जे भावना पूर्वक जिज्ञासा नहीं है ता तत्दर्शी दी शरण जान नाल भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुंदा। केवल श्रद्धा ही काफी नहीं है, श्रद्धावान दी कोशिश टिल्ली भी हो सकती है। इसलिए महापुरुष दे दसे राह उत्ते तत्परता नाल अग्गे वदन दी लगन जरूरी है। इस दे नाल ही सारियां इंद्रियां दा संयम भी जरूरी है। जो वासनावां तो रहित नहीं है उस दे लई साख्यातकार अर्थात ज्ञान प्राप्ति कठिन है। सिर्फ श्रद्धावान आचरण करण वाले अते संयमित इंद्रियां वाले पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करते हन। ज्ञान नू प्राप्त करते ही ओह तुरंत परम शांति नू प्राप्त हो जाते हन, जिस तों बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहिंदा। एहो अंतिम शांति है। फिर ओह कदे अशांत नहीं हुंदे। अते जिथे श्रद्धा नहीं है
अज्ञश्चा श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः।
अज्ञानी जो यज्ञ दी विधि विशेष तो अनजान है अते श्रद्धा रहित ते संशय युक्त है ओह इस परमार्थ मार्ग तो पटक जांदा है। उना विचों भी संशय युक्त पुरुष लई ना ता सुख है अते ना ही मुड़ मनुख शरीर है अते ना ही परमात्मा। इसलिए तत्दर्शी महापुरुष दे पास जाके इस मार्ग दे संशयां दा निवारण कर लेना चाहिदा है, वरना ओह असल वस्तु दा भेद कदे नहीं पाएगा, फिर पौंदा कौन है।
योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय।
योग राही जिसते कर्म भगवान विच समाहित हो चुके हन, जिसकी पूरी संशा परमात्मा दी प्रत्यक्ष जानकारी राही नष्ट हो चुकी है, परमात्मा नाल मिले हुए ऐसे पुरुष नू कर्म नहीं बंदे। योग दे राही ही कर्मा दा शमन अर्थात अंत होवेगा, ज्ञान नाल ही संशा नष्ट होवेगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं
तस्माद् अज्ञान संभूतम् हृत्स्थम् ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत।
इसलिए परतवंशी अर्जुन तू योग स्थित हो अते अज्ञान तो पैदा हुई हिरदे विच स्थित अपनी इस शंशा नू ज्ञान रूपी तलवार नाल कट युद्ध लई खड़ा हो। जद साख्यातकार विच बाधक शंशा रूपी वैरी मन दे अंदर है ता बाहर कोई किसे नाल क्यों लड़ेगा। दरअसल जद तुसी चिंतन मार्ग उत्ते वधदे हो ता शंशा तो पैदा बाहरी प्रवृत्तियां दा बाधा दे रूप विच आउणा स्वाभाविक है। एह शत्रुआं दे रूप विच भयंकर हमला कर दिया हन। संयम दे नाल यज्ञ दी विधि विशेष दा आचरण करदे होए इना विकारां तो पार होना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। एहो अंतिम जित है, जिस तो बाद हार नहीं है। सार, इस अध्याय दे आरंभ विच योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस योग नू शुरू विच मैं सूरज नू दस्या, सूरज ने मनु नू अते मनु ने इच्छबाकू नू दस्या, अते राज ऋषियां ने जानिया, मैं जां अव्यक्त स्थिति वाले ने दस्या। महापुरुष भी अव्यक्त स्वरूप वाला ही है, शरीर तां उसते कहन रहन दा एक मकान मात्र है। ऐसे महापुरुष दी वाणी विच परमात्मा ही प्रवाहित हुंदा है। ऐसे किसे महापुरुष तो योग सूरज राही संचारित हुंदा है, उस परम प्रकाश रूप दा प्रसार स्वास ते अंते करण विच हुंदा है। इसलिए सूरज नू दस्या, स्वास विच संचारित होके ओह संस्कार रूप विच आ गए। स्वास विच रहन ते समा आउन ते ओह मन विच संकल्प बन के आ जांदा है। उसकी महत्ता समझण ते मन विच उस वाक लई इच्छा जागदी है अते योग कारज रूप ले लेंदा है। क्रम बार उत्थान करदे करदे एह योग रिद्धियां सिद्धियां दी राज ऋषि वाली श्रेणी तक पहुंच के नष्ट होण दी स्थिति विच आ जांदा है। पर जो प्रिय भगत है, अनन्य सखा है, उसनू महापुरुष ही संभाल लेंदे हन। अर्जुन दे प्रश्न करन ते कि आपदा जन्म ता हुण होया है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अव्यक्त अविनाशी अजन्मा अते सारे भूतां विच प्रवाहित होण ते भी आत्म माया योग प्रक्रिया द्वारा अपनी त्रिगुणमय प्रकृति नू वश विच करके मैं प्रगट हुंदा हां। प्रगट होके की करदे हो? तां कहा कि साधन योग वस्तुआं दा कल्याण करन अते जिना तो दूषित दुर्गंध पैदा हुंदे हन उना दा विनाश करन लई परम धर्म परमात्मा नू स्थिर करन लई मैं आरंभ तो पूर्णता तक पैदा हुंदा हां। मेरा ओह जन अते कर्म दैवी है, उसनू केवल तत्दर्शी ही जान पौंदे हन। भगवान दा आगमन ता कलयुग दी अवस्था तो ही हो जांदा है जे सच्ची लगन होवे, पर आरंभक साधक समझ ही नहीं सकदा कि एह भगवान बोल रहे हन जां एवें ही संकेत मिल रहे हन। आकाश तो कौन बोलदा है? महाराज जी दसदे सन कि भगवान किरपा करदे हन, आत्मा तो रथी बन जांदे हन, तां पक्खे विच्चों दरखत विच्चों पत्ते विच्चों सुन अर्थात आकाश विच्चों हर थां तो ओह बोलदे अते संभालदे हन। उत्थान हुंदे हुंदे जद परम तत् परमात्मा विदित हो जाए तां उसते अर्थात परमात्मा दे स्पर्श नाल ही साधक सब कुछ स्पष्ट समझण लगदा है। इसलिए अर्जुन, मेरे उस स्वरूप नू तत्दर्शियां ने वेख्या अते मैनू जान के ओह तत्काल मेरे विच ही प्रविष्ट हो जांदे हन, जिथों मुड़ आवागमन विच नहीं आउंदे। इस तरह उना ने भगवान दे अवतार धारण दी विधि दसी कि ओह किसे अनुरागी दे हिरदे विच अवतार लेंदे हन, बाहर कदे नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि मैनू कर्म नहीं बंदे अते इस पद्धर उत्ते जो मैनू जानदा है उसनू भी कर्म नहीं बंदे। एहो समझ के मोक्ष दे इच्छुक पुरशां ने कर्म दा आरंभ कीता सी कि जे उस पद्धर ते जानांगे ता जैसे श्री कृष्ण वैसा ही ओह मुमुक्षु अर्थात मोक्ष दा इच्छुक। अर्जुन एह उपलब्धि निश्चित है जे यज्ञ कीता जाए। यज्ञ दा स्वरूप उन्हां दस्या, यज्ञ दा परिणाम परम तत् परम शांति दस्या। एह ज्ञान पाया कित्थों जाए, इसदे लई किसे तत्दर्शी कोल जान लई अते ऐसे ढंग नाल बेनती पूर्वक पेश आउण लई कहा जिस नाल ओह महापुरुष मेहर करन अते अनुकूल हो जान। योगेश्वर ने स्पष्ट कीता कि ओह ज्ञान तू खुद आचरण करके पाएगा, दूजे दे आचरण राही नहीं मिलेगा, ओह भी योग दे सिद्धि काल विच प्राप्त होएगा, आरंभ विच नहीं। ओह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार हिरदे देश विच होवेगा, बाहर नहीं। श्रद्धालु तत् पर संयमित इंद्रियां वाला अते शंशा रहित पुरुष ही इसनु प्राप्त करता है। इसलिए हिरदे विच स्थित अपनी शंशा नु वैराग दी तलवार नाल कट, एह हिरदे देश दी लड़ाई है। बाहरी युद्ध नाल गीता वाले युद्ध दा कोई मतलब नहीं है। इस अध्याय विच योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुख रूप नाल यज्ञ दा स्वरूप स्पष्ट कीता अते कहा कि यज्ञ जिस नाल पूरा हुंदा है उस क्रिया अर्थात कारज विधि दा नाम कर्म है। कर्म नू सही सही इसे अध्याय विच स्पष्ट कीता। इसलिए ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण नाम चतुर्थोध्याय। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद अते ब्रह्म विद्या अते योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अते अर्जुन दे संवाद विच यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण नामक चौथा अध्याय पूरा हुंदा है। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भगवत गीताय यथार्थ गीता भाष्य यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण नाम चतुर्थो अध्याय। इस तरह श्रीमत् परमहंस परमानंद जी दे शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता विच यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण नाम चौथा अध्याय पूरा हुंदा है। हरि ओम तत्सत्।